प्रैक्टिस तो कीजिए, थोड़े से शुरू कीजिए, ज़्यादा पे जाइए, तो फिर आपको ये बात समझ आएगी कि जिस बंदे का रंज व गम दुनिया हो, फिर अल्लाह उसके मामलात मुंतशिर कर देता है और उसकी फ़कीरी और मोहताजी को इसकी आँखों के दरमियान लिखता है। आप देखिए, दोनों आँखों के बीच में कितनी थोड़ी सी जगह है, कोई चीज़ वहाँ रखें तो कितनी दिखेगी। यानी मुराद है कि उसको हर वक्त दुनिया का गम उसकी आँखों के सामने, दुनिया के मामले। और फरमाया कि इसे दुनिया में वही कुछ मिलता है जो इसके मुकद्दर में लिखा जा चुका होता है, लेकिन इसके बरक्स जिस इंसान की फ़िक्र आखरत हो, उसके कामों को अल्लाह समेटता है। देखिए, एक होता है मुंतशिर करना, कभी ऐसा नहीं होता आप हर वक्त उलझे ही रहते हैं, जैसे ऊन की डोरियाँ, ऐसे ऊन उलझी के समझ ही नहीं आ रही किधर गई। तो कभी कभी ज़िंदगी का हर मामला उलझा लगता है, और डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी अलामत ही है, आप हर वक्त चिड़चिड़े हैं, आपको अपनी कोई चीज़ ही ठीक नहीं लगती। इसके बरक्स आपके मामले दुरुस्त, पता नहीं किसने कर दिया, पता नहीं ये कैसे हो गया। अल्लाह शिराज़बंदी करता है ना, फिर दिल को गनी करता है, और दुनिया जलील होकर उसके मुकद्दर के मुताबिक उसके पास पहुंच जाती है। तो लिहाजा वहशियों के तरीके छोड़ने हैं, शुक्र करना है, और ये उम्मीद रखनी है कि अल्लाह ताला हर तंगी को आसानी में और गम को खुशी में बदलेगा इंशाल्लाह। फिर अगली टिप क्या है, एतदाल में ही राह निजात है, यानी बैलेंस लाइफ, हर रिश्ते में बैलेंस, हर आदत में बैलेंस, हर हैबिट में बैलेंस हो। सादत का कमाल तीन चीज़ों पर है, यानी खुशकिस्मत वो है जो तीन चीज़ों पे अबूर रखता हो। पहली बात है कि गज़ब में एतदाल हो। आप देखिए, लोग गज़ब और गुस्से में आते हैं, बर्तन तोड़ देते हैं, मुँह से तलाक का लफ्ज़ निकाल देते हैं। नहीं, गुस्सा आएगा, आ सकता है, आता है, मोतदिल रहिए, रिलैक्स्ड, थोड़ा सा पी लें, गुस्से को बर्दाश्त करें, खड़े हैं तो बैठ जाएँ, बैठे हैं तो लेट जाएँ, वुज़ू कर लें, एतदाल में रहिए। ये आप क्यों वहशी बन गए, ये आप क्यों दरिंदे बन गए, ये आपने घर को क्या खड़ा बना लिया, रिलैक्स्ड बस। अगर आप ऐसे हैं तो आप सईद हैं, खुशबख्त हैं आप, यू आर ब्लेस्ड। फिर शहवत में एतदाल हो, शहवत के लस्ट, किसी भी चीज़ की लस्ट, जायज़ और हलाल काम की भी, लेकिन लस्ट है, हर वक्त एक ही चीज़ की तरफ ध्यान है, खाने में तो खाते ही जा रहे हैं, शहवत है तो शहवत में आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फिर इल्म में एतदाल, ये इल्म का एतदाल क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज लोगों ने इल्म बराए इल्म को इल्म समझ लिया, इल्म बराए मालूमात को इल्म समझ लिया, इल्म बराए फ़ख्र इल्म समझ लिया, इल्म बराए सर्टिफिकेट, इल्म बराए नस्बत, वहाँ से पढ़ा, उससे पढ़ा, उधर से पढ़ा, आया खाक भी नहीं, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, कोई चेंज भी नहीं आ रहा, लेकिन एक तसल्ली है, हम उससे पढ़ रहे हैं, हम ये डिग्री लेंगे, हमारे नाम के साथ एक और मेडल लग जाएगा, हमारी फाइल में एक और सर्टिफिकेट लग जाएगा। ऐसे इल्म नहीं आता, ये आज के दौर का फितना है। इल्म का इत्तेदाल क्या है बता दूँ, लीजिए, हज़म कीजिए, जब हज़म हो के जिस्म में रूह में उतर गए, फिर और लीजिए, सारी उम्र लेना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। देखिए ना, खाना खाते हैं आप, खाने का इत्तेदाल सोचे तो आपको इल्म का इत्तेदाल समझ आएगा। आप जब खाने में इत्तेदाल है, आपने एक ख़ास हद तक खाया, एक रोटी खा ली, एक गिलास पानी का ले लिया, कुछ भी जो साथ था लिया, तो आपका जिस्म महसूस करता है ना कि बस और नहीं, अब क्या, सो जाएं, उठेंगे तो कटे डकार आएंगे। आप काम करते हैं, रिलैक्स होते हैं, कामों में हैं, कुछ रेस्ट भी करते हैं, तो वो खाना हज़म होता है, 5-6 घंटे बाद दिल में आएगा चले चाय पी लेते हैं, पहला थोड़ा नीचे गया, अगला और आ गया, और इसी तरह ही खाना खाया जाता है जब पहला हज़म हो जाता है। इल्म के साथ साथ डाइजेशन शुरू कीजिए, फिर सारी उम्र ले, रोज़ ले, हफ्ते के 7 दिन, सुबह भी लें शाम भी लें, नहीं भरेगा दिल, क्योंकि पहला हज़म हो रहा है। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है, खाते भी बहुत है, मोटे भी नहीं होते, वजह क्या, सीधी सी बात है, इधर खाया उधर हज़म। तो एतदाल का यही मतलब है कि इन्नम यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह में खशियत वाला बना दे, इल्म के साथ साथ खशियत बढ़ती जाए। इंसान के लिए ज़रूरी है कि इसका हर मामला मोतदिल होता, क्यों मोतदिल हो, कैसे, बैलेंस्ड, ताकि कुव्वत शहवत ना बढ़े कि रुख्सतें ढूँढे और हलाक हो जाए। ये भी नोट करें, कुव्वत शहवत जो होती है ना, ये ख्वाहिशात होती हैं, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ میں یہ لفظ سورۃ آل عمران میں، جتنا ہم کسی بھی معاملے میں رخصتیں ڈھونڈیں، جتنا ہم اس میں سے ایفس اینڈ بٹس میں پڑھیں گے اتنے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ خواہشات ہی ہیں جو ہمیں ٹکنے نہیں دیتی۔ نماز میں کتنی بار ادھر ادھر دھیان جاتا ہے، اچک لیتا ہے شیطان ہماری نماز کو۔ دعا کریں ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں۔ آج ایک سوال اپنے آپ سے پوچھئے، میری نماز کیسی ہے، اس کو بہتر کریں۔ مومن کی زندگی ایسے ہی ہے، ایک مرحلے سے گزرا تو دوسرے کے لیے تیار ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اگر ہماری نمازیں پہلے سے بہتر ہو جائیں، آپ دیکھیں گے 90% غم تو اسی پہ کم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح قوت غضب کے بڑھنے سے سرکشی بڑھے گی، انسان ہلاک ہوگا۔ حدیث میں کہ تمام امور میں اعتدال بہتر ہے، جب قوت علم کے اشارے پر یہ دونوں امور معتدل ہو جائیں تو ہدایت کا راستہ ملے گا۔ یعنی جب آپ غضب کے بڑھنے سے سرکشی کا شکار ہوتے تو آپ ہلاک ہوتے ہیں، جب آپ کے اندر ایک اعتدال آ جاتا ہے نا تو پھر آپ کی زندگی بیلنسڈ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح غضب اگر بڑھ جاتا ہے تو مرنے مارنے پر انسان اتر آتا ہے، اور اگر غصہ کم ہو جاتا ہے تو غیرت اور دین و دنیا کے بارے میں حمیت چلی جاتی ہے۔ اعتدال پر رہے تو صبر، شجاعت اور حکمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی شہوت بڑھ جائے تو فسق و فجور بہت ہو جائے گا، اور اگر کم ہو جائے تو عاجزی اور فطور پیدا ہو جائیں گے، لیکن اگر معتدل رہے تو عفت اور قناعت حاصل ہوگی۔ حدیث میں تم پر لازم ہے کہ معتدل قربانی دو۔ قرآن کہتا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں امتم وسطن بنا دیا، دوسرے پارے کی پہلی آیتیں ہیں 143 البقرہ۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ اعتدال میں رہنا ہے، بیلنس لائف۔ اب دیکھیے اسلام میں ایکسٹریمزم کا کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو بعض دفعہ لوگوں کی نظروں میں کیا دکھایا، شدت پسندی۔ کیا ہے شدت پسندی؟ اعتدال کی راہ چھوڑ دینا۔ اسی طرح آپ دیکھیے میانہ روی سے ہٹیں گے شرمندگی اٹھائیں گے۔ اسی طرح اعمال اور عبادات میں بھی اعتدال مطلوب ہے۔ ابو داؤد کی روایت 4776، راست روی یعنی سچ بولنا، خوش خلقی اچھا اخلاق ہونا، اور میانہ روی نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے 39، آپ نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ، اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ مراد کیا ہے؟ تہجد، کیونکہ رات کی تہجد بندے کے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ٹاپک ہے آدمی اپنی غالب صفات کے ساتھ۔ یعنی ہم سب میں مختلف قسم کی عادات ہوتی ہیں، صفات ہیں، لیکن جو غالب چیز ہوتی ہے نا وہی اصل میں انسان کا تعارف ہوتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ خیر کی صفات بری عادتوں پر غالب ہوں اور آپ کو ہر معاملے میں تعریف کے قابل بنا دے۔ تب آپ میں کوئی برائی بھی ہوگی تو لوگ مانیں گے نہیں، کیونکہ پانی زیادہ ہو تو گندی چیز نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ پہاڑ سے ایک پتھر گھٹا لیا یا بڑھا دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے پڑھا ہے کہ حلیم العرب قیس بن عاصم شریف و سخیب برامکہ اور مشہور سپہ سالار رقتیبہ بن مسلم کی حذف کی گئی، یعنی یہ اپنے دور کے بڑے لوگ تھے تو ان کی حذف کی جاتی تھی، کہہ لیجئے کہ مذاق کیا جاتا تھا، اور سخت نقطہ چینی کی گئی۔ میں نے پایا کہ یہ تنقید اور سب و شتم یعنی گالم گلوچ محفوظ نہیں رہی، نہ نقل ہوئی، نہ کسی نے ان کی تصدیق کی، کیونکہ محاسن اور کارناموں کے سمندر میں یہ قطرہ تھا جو گم ہو گیا۔ ذرا سا رکیے، جذب کریں اس جملے کو، انتہائی خوبصورت ریلیکس کرنے والا جملہ۔ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے شاعر تھے، یہ سارے بولنے والے تھے، ایک سپہ سالار تھے، یعنی اوور آل لوگوں کو ان سے خیر مل رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے ان پہ تنقید کی۔ اب سوچئے جس وقت وہ تنقید ہوئی ہوگی، چھپی ہوگی، لکھی اور بولی گئی ہوگی، بہت ان کو غصہ آیا ہوگا، ہمارے خلاف سکینڈلز بن گئے، ہمارے خلاف یہ ہوا۔ آج کس کو یاد ہے؟ یاد رکھیے اچھے بندے پہ جو تنقید ہوتی ہے نا وہ بھی اس کی عزت بڑھانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے درجے اور بلند کرے۔ اس کے برعکس یعنی یہ جملہ कि वो कतरा था जो गुम हो गया, उनकी खूबियां और कारनामों के समंदर में। तो खूबियां बढ़ाइए, कारनामे बढ़ाइए, लोग आपको बुरा कहने वाले खुद ही बाद में शर्मिंदा होंगे कि हमें गलती लगी थी। इसके मुकाबले में हज्जाज अबू मुस्लिम अल खरासानी और हाकिम भी अमरिल्ला अल उबैदी की खूब मदह व सना की गई, लेकिन वो तारीफ़ और कसीदे महफूज ना रहे, ना मनकूल हुए, ना किसी ने इनको सच माना, क्योंकि वह इनके जुल्मो जौर और झूठ के तूफान में दबकर रह गए। यानी बुरे काम करने वालों की भी तारीफ़ें होती हैं कभी, लेकिन वो सिर्फ़ वक्ती तौर पे उनसे जान छुड़ाने के लिए होती हैं। तो क्या पता चला आप खूबियों का मुरक्का रहे। जो गालिब सिफत है ना आपकी, कल अल्लाह उसको बाकी रखेगा। ये अल्लाह का अदल भी है, अल्लाह बहुत लतीफ़ और ख़बीर है। हम खामखा छोटी छोटी बातों पर घबराते हैं, बिल्कुल ना घबराया करें। आप देखिए कि जब इंसान मशहूर हो जाता है ना, तो बहुत सारे लोग उससे हसद करते हैं। बस हसद नहीं करते, वो उसी की ज़ात से कुछ ना कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, उसकी शोहरत को दागदार करना चाहते हैं। फिक्र ना कीजिए, परेशान ना होइए, ये अल्लाह ने आपको मज़ीद इज़्ज़तें देने का ज़रिया बनाना है। मिसाल दूँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिस वक्त उन पर तोहमत लगी, वो क्या दिन थे। मदीना की गलियां तारीक हो गईं, उदासी छा गई। नबी का दिल उदास था तो शहर कैसे आबाद होता। लेकिन वो एक महीना कमोबेश गुजरा क्या, ऐसे लगा कि जैसे बादलों के पीछे से सूरज चमक उठा या बदलियों के अंदर से चांद झांकने लगा। आज लोग आयशा को किससे जानते हैं? वो आयशा जिसके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुईं। तो दुआ कीजिए कि अगर आज भी किसी साहबे खैर और किसी ऐसे इंसान जिसके अंदर दूसरों के लिए खैर भरी है, अगर उसके दामन पे कोई धब्बे लगाना भी चाहता है, अल्लाह उनको मज़ीद इज़्ज़त और तरक्की का ज़रिया बना दे। फिर आप देखिए कि आगे हमने देखा बायसे शोहरत क्या चीज़ होती है, गालिब सिफत। अंदर खाते लोग छोटा बुरा आपको जो मर्ज़ी कहें, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह उससे। फिर इसी तरह अच्छी सिफात गालिब कैसे रहती हैं, मतलब देखिए कि अच्छी शोहरत हो तो लान तान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या कहते रहे, अल्लाह के नबी क्या कहते थे, मेरी माँ ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है, मुझे नहीं पता ये मुजम्मम कौन है। तो कोई फ़र्क पड़ा प्यारे नबी को लोगों की बातों से? नहीं पड़ा। और जब बुरी सिफात गालिब होती हैं, बुरी शोहरत होती है, तो चापलूसियों के ढेर लग जाते हैं। फिर ऐसे लोग तारीफ़ें भी करते हैं, और ऐसे ऐसे तारीफ़ें करने वाले आपको फ़ायदा कुछ नहीं देंगे, वक्त आने पे वो आपके पास नहीं होंगे। फिर इसी तरह आप देखिए कि अगर अमल अच्छा है तो लोगों की बातों की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। शोहरत अल्लाह के यहाँ भी पहुँचती है, अच्छी और बुरी। दुआ कीजिए अल्लाह मेरे वजली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन मेरे ऊपर बन जाए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, 6639, तुम सिदक पर कायम रहो, क्योंकि सिद्क नेकी के रास्ते पर चलाता है और नेकी जन्नत के रास्ते पर चलाती है। इंसान मुसलसल सच बोलता रहता है और कोशिश से सच पर कायम रहता है, हत्ता कि वो अल्लाह के यहाँ सच्चा लिख दिया जाता है। और झूठ से दूर रहो, क्योंकि झूठ कजरवी के रास्ते पर चलाता है और कजरवी आपकी तरफ ले जाती है। इंसान मुसलसल झूठ बोलता रहता है और झूठ का कसद करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के नज़दीक उसे झूठा लिख लिया जाता है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम, अल्लाह मुझे आपको ना बंदों में झूठा मशहूर करे और ना अपने हाँ। अगली टिप लीजिए, आप इसी तरह पैदा होते हैं। हदीस में कि हर आदमी जिसके लिए बना है वो इसके लिए आसान कर दी जाती है, यानी जिस चीज़ के लिए इंसान बना है वो चीज़ उसके लिए आसान कर दी जाती है। तब फितरी सलाहियतों सिफतों और कुव्वतों को तोड़ा मोड़ा क्यों जाए? अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो इसके असबाब भी फ्राहम कर देता है। इससे ज़्यादा बदबख्त और बदनसीब कोई नहीं जो अपने आप को बदलना चाहे। होशियार शख्स और अक्लमंद वो है जो अपने आप को पढ़ता है और अपनी जगह मुतमईन रहता है। जिस काम के लिए वो बना है इसमें खला दूर कर देता है। तो आज से खुद को पढ़िए, फी ज़िक्रुकुम अफला ताकिलून अफला तुबसिरून। कुरान तो बार बार दावत देता है कि अपने अंदर झांको, तुम्हारे तो अपनी ज़ात में बहुत कुछ है। तुम्हें तो अल्लाह ने खुद एक किताब बनाकर दुनिया में भेजा, तो बहुत कम लोग हैं दुनिया में वो लोग जो खुद को पढ़ते हैं। दूसरों को पढ़ने वाले बड़े, आंखें पढ़ ली, एक्सप्रेशंस पढ़ लिए, अभी दिल में किसी को कोई बात आती भी नहीं। आप कहते हैं मुझे तो इशारे से पता लगता है, और वो भी अगर ससुराली रिश्ते हो तो बस आप तो कनखियों में सब जान जाते हैं। इतने माशाल्लाह आप समझदार और जीरक है, अपने बारे में पता ही कुछ नहीं। नहीं, पढ़ने के काबिल किताब है तो आप खुद हैं, और फिर आपको अंदर जो कमियां दिखे अल्लाह से कहिए, मेरे मालिक तूने बनाया तो मुझे बड़ा अच्छा, क्योंकि तू चीज़ें ख़राब नहीं बनाता, बस ये कुछ चीज़ें मेरे से हो गई हैं, तरह इसको ठीक करते हैं। फिर अल्लाह ताला आपके खला दूर करता है, अल्लाह आपका मेंटोर बनता है, अल्लाह ताला आपकी कमियां ऐसे निकालता है कि एक वक्त आता है आप खुद भी नहीं खुद को पहचानते। तो जो काम के लिए आप बने हैं अल्लाह आपके लिए वो चीज़ें आसान कर देता है। पहरेदारी में हो या मुकदमतुल जैश, यानी बिल्कुल आगे लश्कर के सामने, हर जगह लोहा मनवाता है, यानी आपको अल्लाह चौकीदार बनवा दे कहीं, या लीडर बना दे, अमीर, इमाम, कायद, हर जगह लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। शेख अल नाह सुबुया, कुछ मुश्किल सा नाम है, एक शेख ने पहली हदीस पढ़ी लेकिन आगे ना बढ़ सका, इसके जहन ने साथ ना दिया, तो इसने इल्मे नाहव को सीखा और इसमें महारत हासिल करके अपना लोहा मनवा लिया। यानी कभी वाकई आप एक फील्ड में आते हैं दीन के, आप कहते हैं मैं कुछ पढ़ा लेती हूँ, फिर आपको लगता है कि आप में बोलने की स्किल नहीं, या रब्त नहीं है, या आपके अंदाज़ में चाशनी नहीं है, कोई बात नहीं, आप कोई दूसरा काम कीजिए, अल्लाह आपसे वो भी करा लेगा। आप कंप्यूटर बहुत अच्छा यूज़ करती हैं, आप पावर पॉइंट बहुत अच्छा बनाती हैं, आप जो कर सकते हैं अल्लाह ताला आपसे वो करवा लेगा। और जो नहीं कर सकते तो क्या होगा, एक हकीम कहता है जो आदमी अपने जिम्मे वो काम लेता है जिसे वो कर नहीं सकता, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स दमश्क के मरगजार में खजूर का पौधा लगाए, क्योंकि दमश्क में खजूरें नहीं उगती, और हिजाज में इससे तरंच का फल तोड़ना चाहे, क्योंकि हिजाज में तरंच नहीं उगते, ऑरेंजेस वगैरह और इस तरह की खट्टी मट्टी चीज़ें। तो क्या पता चला, अपने लिए काम ढूंढिए उस फील्ड में जिसके लिए आप बने हैं, जो अल्लाह ने आपको खूबी दी है ना आप वो कीजिए, फिर आप देखेंगे कि अल्लाह की रहमत कैसे आपके पास आएगी। पास लोगों की नाकामी की बहुत बड़ी वजह, उधर खुदाई कर रहे होते हैं जिधर पानी कोई नहीं, उधर बीज लगा रहे होते हैं जहाँ जरखेजी कोई नहीं। कुछ लोगों ने नहीं बदलना, वो ऐसे ही रहेंगे, आप क्यों अपनी जान खपाते हैं उनके लिए, आप उनसे क्यों लंबी उम्मीद लगाते हैं। यकीन करें, ये पढ़ाने के बाद मैंने खुद कई लोगों को अपने जहन के खाने में उलट पुलट किया है, जैसे कभी कभी आप अलमारियों की सेटिंग चेंज करते हैं, ड्रॉस में कभी कुछ कहीं, फिर मुस्तकिली गड़बड़ रहती है ना, वक्त पे नहीं मिलती चीज़ छोटी बड़ी ये वो, तो फिर आपके एक दिन पकड़ के जगह बदलते हैं, बहुत सारे लोगों की जगह बदली जाती हैं दिल दिमाग की अंदर से, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो आप उनको समझते हैं, सारी ज़िंदगी सर फोड़ते रहेंगे वो वही रहेंगे जो हैं। तो आपको मुझे क्या मुश्किल है, हम क्यों परेशान हों इस चीज़ के ऊपर। तो ज़रूरत है इस बात की, इंसानों को पढ़िए, वी नीड टू नो द साइकोलॉजी। तो अल्लाह ने आपको जिस चीज़ के लिए बनाया वही कीजिए। फिर इसी तरह हसान बिन साबित, अजान अच्छी तरह नहीं दे सकते थे क्योंकि वो बिलाल ना थे। कितना खूबसूरत जुमला है, हर शख्स बिलाल नहीं होता, लेकिन क्या आपको हसान बिन साबित की कोई और खूबी पता, अल्लाह के नबी क्या कहते थे इनको, ए हसान हज करो, तुम्हारी हज कुफार को तीरों की तरह लगती है, और फरमाया कि आपके साथ तो जिब्राइल की ताईद है, अल्लाह तईद बना देता है, फरिश्ते आपके साथ होते हैं, सही पढ़ाओ, सीधा बोलो, ठीक बोलो, ऐसे करो, ज़रा ये करो, आपको पता भी नहीं होता, आपको अच्छा पढ़ाना आ जाता है, और इसी तरह की बातें। तो सिर्फ अजान देना ही तो खूबी नहीं है, खालिद बिन वलीद मीरास तकसीम नहीं कर सकते थे क्योंकि वो जैद बिन साबित ना थे। सुभान अल्लाह, चूमने को दिल करे इन जुमलों को। अब खालिद बिन वलीद की खूबी ही कोई और थी, आप उनको के माले विरासत तकसीम करो वो तो दो टुकड़ों में करके कहेंगे आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो, वो इल्मी शख्सियत नहीं थे, वो तो जैद बिन साबित थे, कातिबीन में से थे, कातिबे वही थे। तो क्या खालिद बिन वलीद नाकाम है, तो आप ही सोचिए आप किसके लिए पैदा की गई हैं, अपनी स्किल पहचानिए और ज़ाया ना कीजिए। अगर आप में खूबी है तो आपको कभी पीछे नहीं डाला जाता, अगर कोई डाल दे तो मुझे बताइएगा कि आपकी खूबी से फ़ायदा नहीं लिया जा रहा, और अगर कमी है तो उसको दूर कीजिए, फिर वो खूबी भी काम में आएगी। खप जाएं बस इस दीन की गाड़ी का एक छोटा सा तार और पुर्जा बन के खप जाएं, तो कल गाड़ी जीतेगी ना, रेस में गाड़ी जीतती है तो उसकी ब्रेकें भी जीतती हैं, उसके टायर भी जीतते हैं, उसके अंदर एक बैटरी और इंजन के बीच का तार भी जीतता है। मैं आप अलग से नहीं जीत सकते, एक छोटा सा तार कहाँ जाएगा। असल बात है कि दीन की गाड़ी में लग के कल देखिएगा, हम भी अंबिया की लाइनों में खड़े होंगे और छुप रहे होंगे, शर्मा रहे होंगे, घबरा रहे होंगे कि अल्लाह, मुझे भी पता है कि मैंने किया कुछ नहीं, ना मुझे आता था, बट अल्लाह इस काफले में थी, ये राह हक का काफला था, तूने मुझे अल्लाह के नबियों वाले कामों के लिए चुन तो लिया था। मैं बैठ के बस कंप्यूटर की स्लाइड्स ही हिलाती रहती थी, अल्लाह बस मैं तो बैठ के उर्दू ही लिखती रहती थी, और अल्लाह मैं तो बैठ के एडिटिंग ही करती रहती थी। आप सब उस काफले में होंगे इंशाअल्लाह ताला, जो दीन के इस पैगाम में मुआविनीन है, और जो सुनने आते हैं उनका तो क्या कहना, उनकी तो क्या शान है, जो इस वक्त बैठकर मुझे बुलवा रहे हैं। आप ना सुनते तो मैं किसको सुनवाती, आप ना बैठते तो मैं किससे मुखातिब होती। इसलिए अपनी कदर पहचानिए, वैल्यू योर सेल्फ। आप दुनिया में सिर्फ लोगों को चाय खाना पिलाने नहीं आई, वो भी है, आप जरा कपड़े सीने सिलाने और पहनने पहनाने शॉपिंग करने नहीं आई, आप अल्लाह का मास्टर पीस हैं। कुछ कीजिए, कहीं खपिए, रोइए, तड़पिए, अल्लाह को बीच में रखिए और देखिए फिर अल्लाह आपसे काम कैसे लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आप देखिए कि उलमाए तरबियत कहते हैं कि अपने मुकाम की तहदीद कीजिए। तहदीद पता क्या होता है? हदबंदी। उर्दू बहुत मुश्किल है, मुझे भी अंदाज़ा है, कोशिश करती हूँ बीच में कुछ लफ्ज़ सहूलत के लिए चेंज भी करूँ। तहदीद होती है हदबंदी, बहुत ही बड़ी बात है इसके पीछे। तो देखिए, इसके लिए पहले एक हल्का जुमला समझिए, फिर ये समझाऊंगी इंशाल्लाह। कहते हैं कि उस्ताद कौन होता है, आलिम कौन है, जिसको अपने इल्म की हद पता होती है, यानी छोटा मुंह बड़ी बातें नहीं करता, है एक आम सा दीन का मुबल्लिग और बातें करे बड़ी बड़ी मुफ्तियों वाली। शयूख के दर्जे पे पहुंचना चाहे तो लोगों को लग बता जाएगा कि ऐसे ही भपकियां मार रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पल्ले, दो सवाल लोगों ने पूछने और स्टूडेंट ने तो एक ही सवाल पूछ के समझ जाना है कि ऐसे ही है, बस इधर उधर से सुन सुना के आते हैं और आके सुना जाते हैं। हम भी सुन लेंगे तो हमें भी वो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो वहाँ तो पहुँचने ही नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपका नाम बना रहे कि आपने ये बात सुनाई, आपने मार्का मारा। हाँ, लेकिन जो हकीकी आलिम होता है ना, उसके आधे जुमले से समझ आ जाता है कि ये इल्म बोल रहा है। तो आलिम कौन, जिसको अपने इल्म की हद पता है। देखिए, डॉक्टर सारे ही होते हैं ना, लेकिन हर डॉक्टर ENT तो नहीं होता, हर डॉक्टर BDS तो नहीं होता, हर डॉक्टर ऑपरेशंस तो नहीं करता। तो इसी तरह इल्म की भी मुख्तलिफ रुख होते हैं, ज़रूरी तो नहीं हर बात के अंदर आप घुसे, नहीं आपका वो फील्ड तो छोड़ दीजिए, दूसरे पे चलें। तो आप उलमा क्या कहते हैं, अपने मुकाम की तहदीद कीजिए, यानी पहले अपना मुकाम पहचाने, उसकी हद ढूंढिए, फिर काम कीजिए। मार्का कारजार के लिए मुराद ये कि जहाँ प्रैक्टिकली काम किया जाए, जैसे मैदान जंग, मार्का कारजार होता है आपकी क्लास में आना, बैठना, एक एक चीज़ को सेट करना, ये मार्का है। तो मार्का कारजार के लिए मरते मैदान अलग हैं और दीवान खानों के मुहर्रर और कातिब अलग है, यानी आके बैठ कर ऑन साइट पे पढ़ाने वाले और हैं, और अपने खूबसूरत कुतुब खानों में बैठ कर किताबें लिखने वाले और हैं। फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, यही फ़र्क है ऑन साइट और ऑनलाइन क्लासेस का, जिसको हम समझते नहीं हैं। अब लॉकडाउन है तो घर से मिल रहा है ना, तो अक्सर लोग लेज़ी हो गए, क्या हुआ घर में तो मिल रहा है, इतना तो आसान है, जूम का लिंक है, खोला पड़ा, और सच्ची मैं पूरी फोकस होके बैठती हूँ, मेरे इर्द गिर्द कुछ नहीं, कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट स्टूडेंट, क्या आपने इस लॉकडाउन को अपने लिए रहमत बनाया, लेकिन इसमें भाग दौड़ नहीं है, दीन तो भाग दौड़ का काम है, अल्लाह ना करे दुश्मन आ जाए घर पे और फौजी घर बैठा उसको पिस्तौल और गन चलाने के तरीके बताता रहे, मैदान में जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो दीन वालों को मेहनत का आदी होना पड़ेगा। क्यों सूरत तौबा में अल्लाह ने कह दिया, वो तो किसी जगह पहुंचे ही नहीं अभी, तो उन्होंने ना प्यास सही ना भूख सही, इनको नबी का और साथियों का साथ कैसे मिल जाए। तो दीन का काम हर जगह हर हालात में करना है, घर में बैठ के करना पड़ा तो करेंगे, लॉकडाउन को वजह नहीं बनाएंगे छोड़ने की, और लॉकडाउन खुल जाए तो फिर हम भी लॉक होके नहीं बैठे रहेंगे सिर्फ वहमों के नाम पे और ख्वाहिशों के नाम पे। ऐसे लोगों का इम्तिहान है, दो दिन तीन दिन पहले, बहुत ही मेरी अज़ीज़ हैं, अपनी फैमिली की हैं, उनके बाप भी आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, ख़ुद भी माशाल्लाह आलिम हैं, सऊदीया से ताल्लुक़ और जो भी था। तो मैंने ऐसे ही पूछा उनसे कि सुनाइए ये क्या हो रहा है, मस्जिदें और ये वो। तो उस पे उन्होंने अपने वालिद के रेफरेंस से, जो कभी कच्ची बात ना करें, इतने मुख्तात लोगों में से हैं वो लोग, तो उन्होंने कहा कि अबू कहते हैं कि ये जो कोरोना और ये जो हालात है ना, ये इस दौर के लोगों के ईमान का इम्तिहान था, फितना ईमान है, कहाँ की रहेगी। मैं उस बात को सुन के, आप कहते कोरोना से मौत होती है, जिस्म मरता है, बुखार होता है, स्नीजिंग होती है, और एक आलिम की नज़र से इसमें ईमान के फितने हैं। अब तो देखिएगा वापस आते आते ईमान के लिए हमें कई महीने के सालों खां साल लग जाएंगे। मेरी बात लिख के रख लीजिए, ये फितना ईमान बन गया मुसलमानों के लिए। आप अपनी कोशिशों के नाम पे सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, करिए, आपने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, 100% फिर भी नहीं आप इम्प्लीमेंट कर सकते, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। आप 2 मीटर के फासले को 1 मीटर में बदल लें, कैसे कुछ जगहों पे आप नहीं कर सकते। आपने सैनिटाइजर्स लगा दिए, आपने ग्लव्स दे दिए, आपने मास्क पहना दिए, फिर भी 100% नहीं कर सकते। आपने इस नाम पे कई जगह बंद कर दी कि जहाँ रूहानियत मिलती, जहाँ स्पिरिचुअलिटी मिलती, और अगर मौत आए तो वहाँ आए, इस नाम पे कि आपसे दूसरों को ना लगे। बहुत अच्छा किया आपने माशाल्लाह, लेकिन कई जगह आप ये पाबंदियाँ नहीं लगा सके और लग भी नहीं सकती। ग्रोसरी स्टोर्स थ्रू आउट द 3-4 मंथ्स खुले रहे, आपने लाइनें बनवाई, बहुत अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह, लिमिट कर दी, लोग जो आधे घंटे में शॉपिंग करते थे वो 2 घंटे में ठीक किया, लेकिन पूरी तरह आप नहीं कर सकते, फिर भी आपका रब ही बचाएगा। कितने मुसलमान हैं जिन्होंने इस पूरे अरसे में बंदे बंदे को हर सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे वो दुआएं याद करवा दी लोगों को, जो अल्लाह के नबी ने सिखाई। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मुहु शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, किसने सिखाई? क्या ये दुआ ग्लोबली हर बड़े चैनल, CNN और BBC लंदन और इतने ज़्यादा मुअस्सर न्यूज़ चैनल्स पे नहीं आम की जा सकती थी? कि देखो ये भी एक तरीका है इससे बचने का। कोरोना तो क्या, बड़े बड़े हाथी भी आसमान से उतर आए, अल्लाह उसके मुकाबले में काफ़ी हो जाए, क्योंकि आउज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाती मिन शर्रि मा खलक, अल्लाह की पनाह में आते हैं हर उसकी मखलूक से। तो क्या कोरोना अल्लाह की मखलूक नहीं है? बताइए ना कैसे बचे। आज तो लोगों ने इसका नाम लेकर दिलों के बोझ भी खोल दिए, बिलीव मी, जिनको पहले ही मिलने को ना दिल चाहे, अब तो कोरोना में शक्ल ना देखे उनकी। सोशल डिस्टेंसिंग, मैं कहती हूँ कहीं कहीं तो जगह सोशल डिस्टेंस नहीं हुआ, अनसोशल डिस्टेंस हो गया। माएँ कहती हैं बच्चे घर के अंदर ही नहीं आए, बाहर से चले गए, देखना चाह बच्चे को, मिलना चाह, कहा नहीं मामा सॉरी कोरोना। देखिए मैं कोई तनकीद नहीं कर रही, मेरी ये कोई बात फितना ना बना दे, कोई कुछ ना, ये मेरी इसमें एक राय नहीं। मैं इस वक्त कोई कोरोना क्लास में नहीं बैठी हुई, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अब मुसलमानों के पास इलाज है और हम छुपा के बैठे हुए हैं। अल्लाह ने आपको जो दिया है ना, लोग तरस रहे हैं, आप वो बेहतरीन लोग हैं और मैं हूँ वो बेहतरीन उम्मतिया। अगर अपने प्यारे नबी की सुन्नत पे चल लूँ तो मेरे पास है इस दुनिया के दुखों का इलाज, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की देन से। तो हमें शक है ये कैसे हो सकता है, अब आउज़ु बिकलिमात 3 दफ़ा सुबह और शाम पढ़ लें तो ये होगा, और हमें क्या यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिन मुब्तिला की बिही वफद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक तफ्तीला। किसी मुसीबत ज़दा को देख कर ये दुआ पढ़िए, अल्लाह के नबी का फरमान है अल्लाह उस बंदे को वो तकलीफ़ नहीं होने देता। इन्होंने पढ़ी और पढ़ लिए तो फिर क्यों घबरा रहे हैं, फिर क्यों परेशान हैं? नहीं, बात कुछ और है। तो ज़रूरत है हम पहचाने, खुद को पहचाने। तो इस सारी चीज़ में जो बात सीखी कि आप इसी तरह पैदा होते हैं जिस तरह से अल्लाह ने आपको किया, और आपसे कुछ काम लेना है। आप देखिए कि अपनी फितरी सलाहियतों से हटकर काम करना दूसरों के लिए परेशानी का और अपने लिए शर्मिंदगी का ज़रिया बनता है, और काम नाकस और अधूरा होता है। तो आज के बाद कोई भी काम लेने से पहले चेक कराए, टेस्ट करवाइए, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। क्या आप टीचर बन सकते हैं? जाइए टेस्ट करवा के आइए, पॉजिटिव के नेगेटिव। क्या आप एक कंप्यूटर पर्सन हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। अपनी हर स्किल का एनालिसिस कराइए, टेस्ट करवाइए। फिर अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हो दोनों फ़र्क थे। उमर अबू बकर की तरह बनना चाहते थे, आखिरकार मान गए कि मैं अबू बकर जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि अबू बकर थे, उमर उमर थे। हसन बिन साबित शायर थे, जंगजू नहीं थे, शायरी में ही मेहनत की। खालिद बिन वलीद अजीम जंगजू, मैदान जंग में रहे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में गवर्नरी तक ना इनको दी। क्या करेंगे, थे तो हटा दिया। तो लोगों के मुख्तलिफ रूप होते हैं, रंग हैं, वो कीजिए जिसके लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया।